نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے اور ہمارا آج کا سیشن کتاب الصلاۃ کا پہلا سیشن ہے نماز کا بیان ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں آج حدیث کی روشنی میں نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے بہت کم لوگوں کو اس کا موقع ملتا ہے کہ وہ احادیث کو پڑھ کر پھر اپنی نماز کی اصلاح کریں عموماً لوگ نماز کے نام پر نماز کی بکس پڑھتے ہیں اس میں سب کچھ اچھا بھی ہوگا لیکن آپ کے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا کہ یہ بات حدیث کی روشنی میں یا کسی کا قول ہے یا فتویٰ ہے تو انشاءاللہ ہم اس دعا کے ساتھ اس کو شروع کریں گے کہ ہم سب کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے پہ ہو جائیں اور صلو کما رائی تمونی اسلی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی نمازوں کو حدیث کے مطابق کر سکیں پیج نمبر ہے 204 اور یہ ٹاپک لمبا چلے گا یہ آج اس کا پہلا سیشن ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے فرض ہوئی پہلا باب ہے کیف فوریدت الصلاۃ فی الاسراء کیسے فرض کی گئی نماز اسراء کی رات میں اسراء کیا تھی شب معراج یہ تم سب جانتے ہی ہیں کہ نماز جو تھی وہ شب معراج کو فرض ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اور آپ کے صحابہ جو نمازیں پڑھتے تھے وہ نفلی نمازوں کے ضمن میں آتی ہیں نماز تو شروع سے ہی رہی لیکن جو موجودہ نماز اس کی رکعتیں اس کے فرائض اور اس کا طریقہ کار ہے یہ معراج کے موقع پر تحفتاً دیا گیا تھا کیسے آئیے دیکھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کان ابو ذر رضی اللہ عنہ یحدث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے یا کیا کہا انہوں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجا عن سقف بیتی کھولی گئی فرجا یعنی پھٹنا وہی ہے جو فروج یا فرج کا لفظ ہے سوراخ کے لیے پھٹی چھت میرے گھر کی وَأَنَا بِمَكَّةَ اور میں مکہ میں تھا فنزل جبریل تو جبرائیل علیہ السلام آئے ففرج صدری تو آپ نے چاک کیا میرے سینے کو یعنی میرا سینے کو کٹ کیا ثم غسلہ بماء زمزم پھر اس کو دھو دیا زمزم کے پانی سے ثم جا پھر لائے جا ابھی بیسیکلی پھر آپ لائے کیا لائے تستن من ذہب سونے کا ایک تشت یعنی ایک برتن یا ایک ٹرے بڑی سی جو سونے کی بنی ہوئی تھی پھر کیا ہوا ممتلی حکمتم و ایمانن جو بھری ہوئی تھی ایمان اور حکمت سے امیجن کریں سونے کا تشت ہے تشت جو ہے وہ سونے کا تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا اب وہ کیسے تھا غیب کا معاملہ ہے ہم اس کو بس دیکھ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہوا پھر آپ کے ساتھ کیا کیا گیا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي پس انڈیل دیا گیا اس کو میرے سینے میں ثُمَّ پھر اَطْبَقَهُ پھر اس کو بند کر دیا یعنی میرے سینے کو بند کر دیا گیا ثُمَّ پھر اَخَذَ بِيَدِي پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے چڑھے فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا پھر جب میں آسمان دنیا پر پہنچا قال جبریل کہا جبرائیل علیہ السلام نے لخازن السمائی آسمان کے داروغا کو یعنی جو پہلے آسمان کے داروغا ان کا نام اسماعیل ہے ان کو جبرائیل نے کیا کہا افتح کھولو دروازہ کھول دو قال تو داروغا نے پوچھا من ہذا کون ہے یہ یعنی کن کو بلا رہے ہو کس کو لانا چاہتے ہو قال ہذا جبریل وہ بولے میں جبریل ہوں قال کا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے قال نام کہا ہاں ہے مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فقال تو فرمایا ارسل علیہ فرمایا ارسل علیہ کہ ان کو کیا دعوت دی گئی ہے مراد ہے کہ ان کو انوائٹ کیا گیا ہے انویٹیشن کے ساتھ آئے ہیں یا خود ہی آئے ہیں قال نام فرمایا ہاں فلما فتح علون السماء الدنيا پھر اس کے بعد जब उन्होंने आसमान दुनिया का दरवाजा खोल दिया। फैजा रजुलुन कायदुन, तो वहां एक शख्स बैठा हुआ था। अला यमीन ही असविदतुन, उसके दाईं तरफ एक बड़ा लश्कर था। वाला यसारी ही असविदतु, और उसके बाईं जानिब भी बहुत सारे लोग थे। इजा नजर अकीवल यमीन ही, जब वो देखते दाईं तरफ, राइट साइड पे देखते, दहेका, तो वो हंसते। कौन होंगे ये? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जी। वह इजा नजर, जब वो देखते थे, कीबला शिमाली ही, बाईं तरफ, तो बका, फिर वो रो पड़ते। फकाला मरहबम बिन नबी सालिह, फिर उन्होंने फरमाया कि वेलकम, खुश आमदेद, मरहबा नबी सालिह को, वबन सालिही, और नेक बेटे को, यानी अल्लाह के नबी को अपना बेटा भी कह रहे हैं और नबी सालिह। कुल तुली जिब्रील, मैंने पूछा जिब्राइल से, मन हाजा, ये कौन है? आला हाजा आदमु, फरमाया ये आदम है। वहाजिहिल अस्विदतु अंजमीन ही व शिमाल ही तसमु बी बनी, सॉरी तसमु बनी ही, पूछा कि ये आदम है और इनके दाएं और बाएं इनकी औलाद है, यानी इनकी औलाद की जो रूहें हैं। व अहलुल यमीन मिनहुम अहलुल जन्ना, जो इनके दाईं तरफ हैं वो जन्नती हैं। वल अस्विदतुल्लती अन शिमालिही अहलुन्नार, और जो बाईं तरफ हैं वो उनके जहन्नम में जाने वाले बच्चे हैं। फइजा नजरान जमीन ही, बस जब वो देखते हैं दाईं तरफ, दाहिका, तो वो हंस देते हैं। वइजा नजरा क़िबला शिमालिही, जब वो बाईं तरफ देखते हैं, तो बका, रो पड़ते हैं। हत्ता, यहाँ तक के, अरजबी इलस्समाए सानिया, यहाँ तक कि मुझे ले जाया गया दूसरे आसमान पे। फ़काल अली खास जीनी, सॉरी फ़काल अली खास जीनीहा, फिर कहा गया उसके दारोगा से, इफ्तख, खोल दो। फ़काल लहू खास जीनुहा मिसलमा क़ाल अल्वलु, फिर इस दारोगा ने भी वही कुछ पूछा जो कि पहले ने पूछा। यहाँ देखिए कितनी सख्त सिक्योरिटी है ना आसमानों पे, कि एकदम आने नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे प्रोटोकॉल से पूछ के जाने दिया जा रहा है। खैर, फतह फतह, फिर उन्होंने खोल दिया। काल अनसुन, हजरत अनस ने फरमाया, फजकर अन्नहु वजद फिस समावाती आदमा व इदरीस व मूसा व ईसा व इब्राहीम सलावातुल्लाहि अलैहिम। हजरत अनस ने फरमाया कि हजरत अबू जर के बयान के मुताबिक कि अल्लाह के नबी ने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, इन सब पर अल्लाह ताला की रहमत हो। वलम युस्बित कैफ मनाज़िलुहुम गैर अन्नहु ज़करा, लेकिन इनके मुकामात को बयान नहीं किया, यानी ये नहीं बताया कि कौन किस आसमान पे था, सिवाय गैर अन्नहु ज़कर अन्नहु वजद आदम फिस समाए दुनिया, सिर्फ आदम को पहले आसमान पे, आसमान दुनिया पे, व इब्राहीम फिस समाए सादिसती, और छठे आसमान को पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया। قال انس, حضرت انس نے فرمایا فلما مر جبريل بالنبي بدريس, جب جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے پہنچے, قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح, انہوں نے کہا کہ مرحبا ہو نبی صالح اور صالح بھائی کو, یعنی نفس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا۔ فقل, تو میں نے کہا, من ہذا, یہ کون ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں۔ قال ہذا ادریس, کہا یہ تو ادریس ہیں۔ ثم مررت بموسیٰ, پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ فقال, پھر کہا, مرحبا بالنبی الصالح, مرحبا ہو نبی صالح کو, و اخ صالح, و اخ, سوری, و اخ صالح, اور نیک بھائی کو۔ قل تو من حاضر, میں نے پوچھا, کون ہے یہ؟ قال حاض موسیٰ, کہا یہ موسیٰ ہے۔ ثم مررت بعیسیٰ, پھر میں گزرا عیسیٰ کے پاس سے۔ فقال, مرحبا بالاخ صالح, مرحبا ہو صالح بھائی کو, و نبی صالح, اور نبی صالح کو۔ فرق کیا دونوں میں آپ نے دیکھا؟ باقیوں نے نبی صالح پہلے کہا اور اخن صالح بعد میں کہا, تو موسیٰ نے, عیسیٰ نے اپوزٹ کہا۔ قلت, میں نے پوچھا, من ہذا, یہ کون ہے؟ قال ہذا عیسیٰ, फरमाया ये ईसा है। सुम्मा मरर तो भी इब्राहिमा, फिर मैं इब्राहिम के पास से गुजरा। फ़क़ाला मरहबम बिन नबी ये साले, कहा कि मरहबा हो नबी साले को, वबनि साले और नेक बेटे को। कुल तुमन, आपको नेक बेटा क्यों कहा? किसकी नस्ल से थे अल्लाह के नबी? इस्माइल की नस्ल से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल की नस्ल के नाते फिर इब्राहिम के बेटे ही हुए ना जी। कुल तो मन हाजा, मैंने पूछा ये कौन है? काला हाजा इब्राहिमो, ये इब्राहिम है। काला वकान अबन अब्बास रदी अल्लाह अनहुमा व अबू हब्बत अल अंसारी रदी अल्लाह अनहु यकूलानी, कहते हैं कि ये सारा पूछने के बाद हजरत इब्ने अब्बास और अबू हब्बा अंसारी का बयान है, ये उनकी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? यकूलानी कालन नबीयु, वो दोनों कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, सुम्मा उरी जबी हत्ता जहरतुल लि मुस्तवन अस्मा फीही शरीफ अल अकलाम, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर मुझे ऊपर ले जाया गया यहाँ तक कि मैं कैसे बुलंद मुकाम पर पहुंचा जहां मैं फरिश्तों के कलमों की आवाज सुन रहा था। शरीफ सराफा, जैसे चलना होता है ना, रगड़ एक लगती है कलम के साथ कुछ लिखे उसकी, और अकलाम कलम की जमा है। काला अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक ने कहा, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फफरद अल्लाह अला उम्मती 50 सलातन, बस फर्ज की अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें। फरजा तु बिजालिका, फिर मैं लौट गया उनके साथ। हत्ता मरर तो अला मूसा, फिर मैं गुजरा मूसा अलैहिस्सलाम के पास से। फ़क़ाला, तो उन्होंने पूछा, मा फ़रद अल्लाहु लका अला उम्मती का, क्या फ़र्ज़ किया है अल्लाह ने आप पर आपकी उम्मत पर? कुल तो मैंने कहा, फ़रद 50 सलातन, कहा अल्लाह ने 50 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। काला फरमाया, 50 होती तो एक दिन में कितनी देर के बाद पढ़ते हैं मोमन? 25 मिनट के बाद एक नमाज, 24 घंटे है ना, आधा घंटा होगा तो 48 है, तो दो नमाजों का 5-5 मिनट करें, हर आधे घंटे बाद एक नमाज का वक्त शुरू होता, तो जो पढ़ रहे होते हैं नमाज उसको पढ़ने में कितना वक्त लगता? वजू करके नमाज पढ़ने में आधा वक्त लग जाता ना, आधा घंटा वजू करके आधा घंटा नमाज में लग जाता, तो 24 घंटे फिर नमाज ही पढ़ते। सोते कब? और अगर सो जाते तो फिर नमाजें और भी जल्दी जल्दी हो जाती। अल्लाह अकबर। काला फरमाया, किसने? मूसा ने। फरजीला रब्बी का, बस वापस जाओ अपने रब की तरफ। फैन्ना उम्मत का, बस तेरी उम्मत, ला तो तेकु जालिक, नहीं ताकत रखती इसकी। फरा जा तू, बस मैं लौटा। फदा शत्रहा, फरा जा तू इला मूसा, कहते हैं कि मूसा ने कहा कि मैं वापस गया और जाकर अल्लाह ताला से ये बात कर दी, और वापस गया तो अल्लाह ताला ने कुछ नमाजें माफ़ कर दी, यानी अब ये बार बार मामला होगा, कुछ हिस्सा उसका माफ़ कर दिया। फरजात उलई ही, मैं फिर वापस लौटा। फ़काला, फिर मूसा ने कहा, इर्जीला रब्बी का, फिर जो अपने रब की तरफ। फ़इन्ना उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिका, आपकी उम्मत अभी इसकी भी ताकत नहीं रखती। फरजात हो, मैं फिर लौटा उसके पास। फ़काला, बस कहा, ही खमसुन वही खमसून, ये 5 हैं लेकिन असल में ये 50 हैं, यानी आप 5 हैं लेकिन उम्मत 5 पढ़ के 50 का अजर लेगी, क्योंकि ला युबद्दलुल कौलु लदैया, मेरी बात नहीं बदलती। जब पहले कह दिए कि 50 का अजर है तो मैं 50 के अजर दूंगा। ये अल्लाह, ये जुमला कहाँ कुरान में आता है आपको? होता ला युबद्दलुल कौलु लदैया, सूरत कौफ में है। फरजात इला मूसा, कहते मैं फिर मूसा के पास आया। फकालर जी रब्बा का, फिर लौटो अपने रब की तरफ। फकुल तू, तो मैंने कहा, यानी मूसा को ये पता था कि ये उम्मत 5 भी नहीं पड़ेगी, तो आप वापस जाओ, तो मैंने कहा, इस तह यही तू मे रब्बी, मुझे हया आती है, शर्म आती है अपने रब से। आज हम जब नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह के नबी को शर्मसारी करते हैं ना। सुम्मा इंतलक़ भी, फिर वो चले मेरे साथ। हत्तंतहा भी इला सिदरतिल मुंतहा, यहाँ तक कि हम सिदरतिल मुंतहा तक पहुँचे। व गशियहा, और छुपा लिया था उसको, ढांप लिया था। अलवानु लादरी वाहिया, वहाँ वो रंग थे जिसको मैं देख भी नहीं पाता था, मैं नहीं जानता वो क्या। सुम्मा, फिर उदखिलतुल जन्ना, मैं दाखिल किया गया जन्नत में। फ इजाहिया, पस बेशक वो हवा इलुलुई व इजा तोरा बुहल मिस्क। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि उसके बाद मुझे जन्नत में डाल दिया गया, वहां क्या क्या रंग थे मुझे नहीं पता। जन्नत में दाखिल गया तो देखा कि वहां मोतियों की लड़ियां हैं और इसकी मट्टी कस्तूरी की है। अब आप देखिए कि इस पूरे खूबसूरत वाक्य में, ये एक तो पहले बात है कि मेराज का सफर है और अल्लाह के नबी को बेदारी की हालत में हुआ था, जिस्म और रूह दोनों के साथ हुआ था। कुछ लोग इसको ख्वाब कहते हैं, तो भाई इतनी बड़ी बात क्यों हो गई, अल्लाह ने इसका इतने अहतमाम और प्रोटोकॉल से जिक्र क्यों किया। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि इस मौके पर नमाजें फर्ज हुई। जब भी कहीं जाते हैं ना तो कुछ गिफ्ट लेन देन होता है, चलो खुशी से आप कहीं लेके जा रहे हैं, फिर घर वाला आपको देता है। रिवायत में ये आता है कि अल्लाह के नबी जब मेराज के मौके पे गए थे तो आपने जाके अल्लाह ताला को जो तोहफा दिया था, अत्तहियातुलिल्लाह वाली जो बात हम नमाज में पढ़ते हैं वो थी, और अल्लाह ताला ने 50 से फिर 5 नमाजें कम कर दी। अब आप देखिए 9 बार अल्लाह के नबी के पास गए, अल्लाह के नबी अल्लाह के पास गए तो हर दफा 5 5 5 कम करते करते आखिर में 5 रह गई। यहां फिर तो ही जो मेराज के तोहफों में एक तोहफा मिला कि हर नेकी का अजर 10 गुना है। नमाजें 5 पढ़ते हैं, अजर 50 का होता है। इसी तरह बाकी अमल जो हम करते हैं उन सब का अजर भी अल्लाह ताला के हुक्म से फिर 50 गुना होता है। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज भी पता चलती है कि तोहफे की तो लोग कदर करते ही हैं, जैसा भी लगे। कहते हैं नहीं ये यादगार है, ये फलाने ने मोहब्बत से दिया है, ये उसने हमें याद रखा है, तो हम नमाजों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इस बात पे, खास तौर पे जो आज उम्मत का नमाजों के साथ ताल्लुक है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिसको यहां नहीं पढ़नी उसको हरम में भी नहीं पढ़नी। हरम की दीवारों के इर्द गिर्द अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, अजानें हो रही हैं। एक तो वो लोग हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, यानी जो ऑन ड्यूटी होते हैं दरवाजों में खड़े, उनका तो मैंने सुना है कि वो फिर पढ़ते हैं बाद में, लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मजदूर बैठे हुए, दुकानें तो बंद हो जाती हैं, रास्तों में सड़कों में टैक्सियां चलती हैं, उधर से हरम की अजान है, आवाज है, लोग भाग रहे हैं, पता नहीं बेचारे कहाँ पढ़ते हैं। मैं नहीं कुछ कहती उनके बारे में, लेकिन जाहिर ये लग रहा होता है कि वो जमात से तो नहीं पढ़े। तो ये एक तकलीफ की बात है कि आप हरम के दरवाजे के आगे भी खड़े हैं, अगर नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी। कई दफा होटल से मस्जिद जाते हुए रास्ते में ये 8 10 साल के जो बच्चे बैठे थे तो मैं उनको कहती थी सल चलो भागो पढ़ो नमाज, तुम्हें क्या मसला है, तो उनको बड़ा अजीब लगता था। कई लोग बैठे सिगरेट फेंक रहे होते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी उम्मत को 5 वक्त नमाजी बना दे। अब अगली हदीस आप मेरे साथ दोहराएंगे, इसमें नमाजों के औकात और उनकी रकात का जिक्र है। अन आयशा उम्मिल मोमिनीना रदियल्लाहु अन्हा कालत फरदल्लाहु सलाता حين فرضها ركعتين ركعتين في الهدر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الهدر उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की थी तो हजर और सफर, हजर कौन सा है जो इस वक्त मेरा और आपका हाजिर है, यानी अपने घर में जब हम स्टेबल होते हैं अपने मुल्क और अपने शहर में, हजर और सफर में हर नमाज की 2 2 रकतें फर्ज की थी, फिर नमाज सफर अपनी असल हालत पर कायम रखी गई और हजर की नमाज में इजाफा कर दिया गया। इशारा क्या, जोहर के 4 फर्ज है ना, शुरू में 4 नहीं थे, 2 ही थे। असर के 4 फर्ज हैं, शुरू में 2 फर्ज थे। ईशा के 4 फर्ज है ना, शुरू में 2 थे, बाद में सफर के वही रहे लेकिन हजर के बढ़ा दिए गए। एक और भी तो तरीका हो सकता था ना कि पहले सबको 4 कर दिया जाता, सफर की भी सब कुछ, और बाद में सफर को कम कर दिया जाता, यानी इसका ऑपोजिट किया जाता। ये क्यों नहीं किया जी, कोई बताएगा? कसर नमाज की अहमियत के लिए। इससे पता चलता है कि सफर के दौरान पूरी नमाज पढ़ने की निस्बत थोड़ी नमाज पढ़ना ये ज्यादा अजीमत का रास्ता है। अक्लों में नहीं आती ये बात, लेकिन ये रुख्सत पर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है। तो बाद लोग ये सोच कर के चलो सफ़र में है, टाइम भी बहुत है, आए भी हज और उम्रे के लिए हैं, तो पूरी नमाजें पढ़ें। नहीं, जब अल्लाह का गिफ्ट है तो फिर उसको पूरा करना है। ठीक है, तो आजकल नमाज दोहरा लेते हैं, आगे आएगा वैसे कसर का बयान, लेकिन कसर नमाज कितनी होती है? मैं बोलती हूँ नमाज का नाम, आप रकतें बोलेंगे। फजर, फजर की दो सुन्नतें अदा करेंगे, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, एक या तीन, जितने भी वितर आप पढ़ें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे देखते हैं कपड़ों की क्या कैफियत है नमाज में। वजूब सलाती फिस सयाबी, नमाज के लिए लिबास की फर्जियत, यानी कपड़े पहन के नमाज पढ़ो। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मुश्रिकीन मक्का बगैर कपड़ों के नमाज पढ़ते थे। सूरत अल अराफ के आगाज में इसका जिक्र है। अन उमर इब्ने अबी सलमा रदियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर बिन अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सौबिन वाहिदिन, एक दफा यानी आपने नमाज पढ़ी एक ही कपड़े में, यानी बस ऊपर से एक चादर ओढ़ी हुई थी। قد خالف بين طرفيه, बस उलट लेते थे इसके दोनों किनारों को। यानी देखिए गुरबत का हाल क्या था, एक कपड़ा था जिस्म को उससे छुपाया हुआ था, और इसके दोनों किनारों को उलट कर अपने कंधों पर डाल लेते थे। आप समझें कि तहमत की तरह एक चादर मर्द को बांधे, फिर वो उसके पाँव तक पूरी जब हो जाती है तो वहीं से उसके नीचे किनारे लेकर उसको अपने शोल्डर्स पर ले लें। ये कैफियत है, समझ आई? तहमत की जगह पे चादर बांधी, फिर उसको नीचे लटक गई ना, तो उसकी विड्थ ज्यादा होगी, तो वो नीचे वाले सिरे किनारे पकड़ के तो उसको अपने शोल्डर्स पे पीछे से डाल लें, तो वो पिंडलियों तक पाँव भी छुप गए और शोल्डर भी छुप गए। ये हालात थे बाज दफ़ा ऐसे मौक़ों पर। अल्लाह अकबर। और इस तरह बांधते थे कि जब रुकू में या सजदे में जाएं तो ना तो कपड़ा जिस्म से गिरे और ना रुकू की हालत में शर्मगाह खुले, यानी वो एक किस्म की बांध लेते थे चादर इस तरह से बगल के नीचे से। इसका तरीका भी इन्होंने लिखा है कि किस तरह से कपड़े का वो किनारा जो दाएं कंधे पर उसे बाएं बगल से, और जो बाएं कंधे पर उसे दाएं बगल से निकाल कर सीने पर बांधते थे। समझ आ रही है पीछे से? यानी कि ऑपोजिट वे पे उसको बांधते थे कि फिर वो जिस्म के ऊपर चादर जो थी वो अच्छी तरह से लिपट जाती थी। फिर अस्सलातु फी सौबिल वाहिदी मुल्तहिफन बिही, एक ही कपड़े को लपेट कर इसमें नमाज पढ़ना। कैसे? अनुम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हा कालत, उम्मे हानी जो अबू तालिब की बेटी थी उनसे रिवायत है। अल्लाह के नबी की क्या लगी? चचाजात, बहन लगी, कजन लगी। वो ये रिवायत बयान करती हैं, क्या? हदीस सलातु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-फतह तकद्दमा, हजरत उमेहानी की वो हदीस जिसमें फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह की नमाज का बयान है। यानी उसमें ये मसला हमें समझ आता है कि एक ही कपड़े को लपेट कर नमाज पढ़ना। ये जैसे हमने ऊपर वाली हदीस में पढ़ा, और पीछे ये हदीस 199 में डिटेल से गुजर भी चुकी है। फिर इन्हीं की एक और रिवायत में इजाफा है, वफी हाजही रिवायती कालत फसल्ला समानिया रकातिन, हजरत उम्मे हानी एक इजाफा क्या करती हैं कि अल्लाह के नबी ने एक ही कपड़ा अपने गिर्द लपेट कर 8 रकत नमाज पढ़ी। ठीक है, मुल्तहिफन फी सौबिन वाहिद, जब आप एक ही कपड़े में लिपटे हुए थे। फलमन सरफा, फिर जब आप वहां से पलटे या फारिग हुए। कुलतु, तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ज़ामा इब्नु उम्मी अन्नहु क़ातिलुन रजुलन कद अजरतुहु, ए अल्लाह के रसूल, मेरे मादरजात कौन होता है? भाई कौन? हजरत अली की तरफ इशारा है, हजरत अली की बहन थी ना ये, क्योंकि अबू तालिब के वो बेटे थे। तो कहती हैं कि एक आदमी हबीरा के फलां बेटे को कत्ल करने का इरादा करते हैं, जबकि कद अजरतुहु, मैंने उसको पनाह दी हुई है। फलान अबना अबू हुबैरा, फ़काल रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कद अजरना मन अजरती या उम्महानी, आपने कहा है उम्मे हानी जिसे तुमने पनाह दी उसको हमने भी पनाह दे दी, यानी उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। कालत उम्मे हानी, और उम्मे हानी कहती हैं वज़ा का दोहन, ये चाश्त की नमाज थी। बेसिकली जब फतह मक्का हुई थी तो उस वक़्त बहुत सारे कुफार को पकड़ने का हुक्म था और उनकी यानी अमान ख़त्म हो गई थी, लेकिन इन्होंने किसी कत्ल करने वाले को अपने घर में अमान दी, तो ये उस दौर की एक ऑनर होती थी कि आप कहते हैं ना इसको मेरी अमान है, तो फिर बाकी कहते थे अच्छा आपकी इज्जत में हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, ये बात है। लेकिन यहाँ जो बात वो कर रही हैं वो चाश्त की नमाज की कर रही हैं कि ये सारा मामला सुबह के वक्त हुआ। फिर अगली रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न सा'इलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक साथी ने रसूलुल्लाह से एक कपड़े में नमाज का हुक्म पूछा, अन सलाती फी सौबिन वाहिद, कि क्या एक ही कपड़ा हो जिस्म पर तो नमाज पढ़ेंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी ने कहा, अब मैं और आप इसको ज़रा गौर से सुने, सवाल क्या है आपका, अवली कुल्लिकुम सौबानी, क्या तुम में से हर एक के पास दो कपड़े होते हैं। समझ आइए, यानी एक कपड़े में क्यों नहीं होगी, क्या हर बंदे के पास दो कपड़े होते हैं। अब आप इस दो को 100 कर लें, क्या हर बंदे के पास 100 कपड़े होते हैं, क्योंकि 99 तो होते ही हैं, 99 गिन के देख लें जाके घर में हर तरह, और कपड़े से मेरा जोड़े और वो कड़े हुए और सिले हुए नहीं, हर तरह का कपड़ा जमा कर लें, दुपट्टे चादरें अबाए स्कार्फ मोटे कपड़े पतले कपड़े और न जाने क्या कुछ, इससे भी ज्यादा होंगे। उनकी जरूरत की चीजें थी, हमारी तईशात से भी बढ़ गई। अल्लाह ताला हमें हमसे हिसाब न ले और जो नेमतें दी हैं उसको इस्तेमाल करके उसको आगे करें ताकि हमारे हिसाब से वो निकल जाए। इज़ा सल्लफ़ सौबिल वाहिदी फल यजल अला आतिकैही, जब कोई एक ही कपड़े में नमाज पढ़े तो अपने कंधों पर कुछ कपड़ा डाल ले, यानी नमाज में मर्द का जो सतर है वो शोल्डर्स भी कवर्ड है, खुली बिल्कुल जैसे बुनियान भी ना कोई पहने और शोल्डर्स भी नंगे हों, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। वन हु कौन, हजरत अबू हुरैरा से ही रदी अल्लाह अन्हु काल रिवायत है, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्ली अहदुकुम फी सौबिल वाहिदी, ना नमाज पढ़े तुम में से कोई एक ही कपड़े में, लैसा अला आतिकैही शैयुन, कि उसके कंधों पर यानी शानों पर कोई चीज ना हो, यानी शोल्डर नंगे ना हो। सूरत क्या है, कपड़ा इस कदर वसी हो कि सतर पोशी के बाद इससे कंधे भी ढांप लिए जाएं, और अगर कपड़ा तंग हो छोटा हो कि कंधों को छुपाने के बाद सतर खुलने का अंदेशा हो, तो फिर सतर पोशी के बाद कंधों को खुला रखना यानी मजबूरी की हालत में नमाज पढ़ लेना ये जायज़ है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि पूरा जिस्म ढका हो, सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि अगर कपड़ा थोड़ा ही है तो फिर कपड़ा थोड़ा तो सतर को ढांप लो और शोल्डर्स को ढांपने की कोशिश करो, फिर अगर उससे भी कपड़ा थोड़ा है तो फिर सिर्फ सतर को ढांप लो, नमाज फिर भी नहीं छोड़नी। हम तो इससे पहले ही नमाज छोड़ने का पूरा इरादा कर चुके हों कि कपड़ा ही नहीं है, दुपट्टा ही नहीं है, ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, और आपको यहाँ से वाकई अंदाजा होगा कि वो किस कसम पुरसी की जिंदगी बसर करते थे। अगली रिवायत वन हु रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा से ही एक और रिवायत में आता है, अशहद अन्नी समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलू, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन सल्लफी सौबिन वाहिदिन, जो शख्स एक ही नमाज एक ही कपड़े में नमाज पढ़े, फल युखालिफ बैन तरफैही, तो उसे चाहिए कि इसके दोनों किनारों को उलट ले, वही जो शुरू में पहली बात में कि अपोजिट साइड से उसके कपड़ों को कंधों पर डाल ले। इज़ा काना सौबु दय्यिकन, जब कपड़ा तंग हो तो इसमें नमाज कैसे पढ़ें। अब आज देखिए कुछ लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं लेकिन इतने टाइट होते हैं, अल्लाह की पनाह, तो आइए शायद इधर से कुछ गाइडलाइन मिल जाए। अन जाबिर रदी अल्लाह अन्हु काल, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, खरज तुमा नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बादी अस्फारी ही, हम अल्लाह के नबी के साथ उनके सफरों में से किसी एक सफर पर निकले, फजीतु लैलता लिबादी अमरी, तो कहते हैं कि रात को एक जरूरी काम के लिए आपके पास आया, यानी रात हो रही थी तो मैं आपके पास आया, तो मैंने क्या देखा, फवजतु युसल्ली, तो मैंने आपको देखा कि आप नमाज पढ़ रहे थे। वालय सोबुन वाहिदुन, मेरे ऊपर बस एक ही कपड़ा था। फर्श तमल तु भी, तो मैं भी शामिल हो गया आपके साथ, यानी आप नफिल पढ़ रहे थे तो मैंने अपने उस कप सॉरी फर्श तमल तो भी ही, मैंने उस कपड़े को अपने ऊपर लपेटा हुआ था। वसल्लई तो इला जानी भी ही, तो मैं आपके पहलू में खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। फलम मन सरफा, फिर जब आप फारिग हुए यानी नमाज पढ़ चुके, काला फरमाया, माँ उस सुर्रा या जाबिरिन, ये आपको रात के वक्त कौन ले आया? वही लफ्ज असरा वाला कि रात के वक्त क्या चीज आपको यहाँ ले, आप यहाँ कैसे आ गए? फखबरतुहू बिहाजती, फिर मैंने उनको खबर दी अपनी हाजत की कि मैं इस काम से आया हूँ, इस वजह से आया हूँ। फलम्मा फरख्तु काला, फिर जब मैं फारिग हुआ, जरूर बताइए, जब मैं अपने काम से फारिग हुआ तो आपने फरमाया, मा हाजा इश्तेमालुल लज़ी रअईतु, ये कपड़ा लपेटना कैसा था जो मैंने देखा, यानी ये आपने अपने जिस्म पे जो कपड़ा लपेटा ये क्या? कुल तो, मैंने कहा, काना सौबुन, कहा मेरे पास एक ही कपड़ा था। काला फ इन का नवासियन, कहा अच्छा अगर ये कुशादा हो तो फल तहफ भी, तो लपेट लो इसको। व इन का न दे यकन, और अगर तंग हो तो फिर क्या करो? फत तजिर भी, बस फिर इसी से आजार बना लो, यानी फिर सिर्फ तहमत बनाओ। सारी बातों में बात एक ही है कि कपड़ा तंग है तो फिर सिर्फ आजार बनेगी, सतर ढपेगा, और अगर चौड़ा हो तो कंधों पे भी डलेगा। और मुस्लिम की रिवायत में आता है कि वो कपड़ा बहुत तंग था और जाबिर इसे पहनकर इसलिए आगे को झुके हुए थे कि कहीं सतर ना खुल जाए। इमेजिन करें, यानी इस तरह झुक के चल रहे थे कि अगर सीधा हुआ तो कपड़े की तंगी वजह से मेरा सतर ना खुल जाए। तो उस वक्त फिर अल्लाह के नबी ने उनको ये बात कही। अल्लाह अकबर, आज बस लोग शौक से इतने तंग कपड़े पहनते हैं कि जिस्म भी खुलता है। बस हम ये सोचते हैं ना कि औरतों के लिए सतर का मामला, कपड़े तंग ना हो ये हो, मर्दों के लिए भी। और बाज़ दफ़ा जो पैंट्स खास तौर पे पहनी जाती हैं, शर्ट्स ऊंची हों, तो वो सतर के तकाजे पूरे नहीं होते। नमाज पढ़ते हुए मर्द का भी सतर इस तरह छुपाना चाहिए कि ना उसकी शेप दिखे और ना उसकी हैयत का पता चले। तो अगर टाइट्स कोई भी पहनता भी है तो उसको फिर घुटनों तक कम अज कम ऊपर लॉन्ग शर्ट्स पहननी पड़ेंगी। अगली रिवायत, अनसहल रदी अल्लाह अन्हु काल, कान रिजाल युसल्लून मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहल बिन सादी कबीले से थे, इनसे रिवायत है कि फरमाया कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, किस तरह से? आकिदी उजरीहिम अला आनाकिहिम, अपनी चादरें बच्चों की तरह गर्दनों पर बांधे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, क्या गुर्बत का दौर गुजरा। पहले दौर में आपने देखा है, बल्कि आजकल भी गांव में देखा होगा कि माएं बच्चों को गर्मियों में एक वो झल्ली सी में डालकर तो चादर ही बांध देती हैं। कहते हैं जिस तरह बच्चों को एक चादर में लपेट लपुट दिया जाता है तो मर्द भी इसी तरह बांध देते थे। कहियत सबियान, जैसे कि बच्चों को किया जाता है। वह युकाल उलनिसा, और औरतों को कहा जाता था, कौन सी औरतें? जो पीछे जमात से नमाज पढ़ रही होती थी। ला तरफा न रू सकुन्ना, मत ऊपर करो अपने सरों को, कब तक? हत्ता यस्तवी यल रिजाल जुलूसन, यहां तक के मर्द सजदे से सर ना उठा ले, कि कहीं औरतों के नजर मर्दों के सतर पे ना पड़ जाए। हमें तो ये बातें नहीं समझ आने की, ना हम इस पे इतना गौर करें। बस ये दुआ करें कि जो अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत कपड़े दिए हैं, इतने रंग रंग के लिबास हैं, हम हर लिबास में नमाज पढ़ सकें। मुसलमान का कोई कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें वो इबादत ना करे। अस्सलातु फिल जुब्बति शामिया, अब एक तरफ इतनी तंगी तुरशी थी लेकिन अच्छे से अच्छे लिबास में भी नमाज पढ़ी जाएगी। शामी जुब्बे में नमाज पढ़ना, मुल्क शाम से कुछ जुब्बा आता है, जुब्बा आप समझते हैं ना, मर्दों का जो लॉन्ग ड्रेस होता है वो। अनिल मुगीरा इब्ने शोबत रदी अल्लाह अन्हु काल, हजरत मुगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, कुंतु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, मैं अल्लाह के नबी सल्लम के साथ एक सफर में था। फ़काला, तो आपने फरमाया, या मुगीरा तू, ए मुगीरा, खुजिल इदावता, उठा लो पानी का बर्तन। फ़अख़ज़तुहा, फिर मैंने उसको उठा लिया। फन तलका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के नबी चल पड़े। हत्त तवारी अन्नी, यहाँ तक कि वह आप मेरी नजरों से ओझल हो गए। फ़कदा हाजतहू, फिर आपने अपनी हाजत को पूरा किया। वालेही जुब्बतु शामी यतु, आपके ऊपर शामी जुब्बा था, यानी अच्छा जुब्बा था, बड़ा लिबास था। फजहबा लियुखरिजा यदहु मिन कुम्मिहा फदाकत, तो कहते हैं कि आपने इसकी आस्तीन से हाथ निकालना चाहा, चूंकि वो तंग था, यानी आगे से उसकी जो मोरी होती है वो तंग थी तो हाथ नहीं निकल सकता था। क्या किया, फखरजा यदहु मिन असफलिहा, तो आपने अपना हाथ इसके नीचे से निकाल लिया, जैसे जैसे अपनी बाजू उतार दी और अंदर से हाथ निकाल लिया जुब्बे के। फिर फसबबतु अलैहि, फिर आप इसके क्या कहते हैं, फिर मैंने क्या किया, पानी डाला आपके ऊपर। फतवद्दा वुजूअहु लिस्सलाती, फिर आपने नमाज के लिए वुजू फरमाया। वमसह अला खुफ्फैही, फिर आपने अपने मोजों पर मसा किया। सुम्मा सल्ला, फिर आपने नमाज पढ़ी। अच्छा जी, अब आप देखिए कि इसमें दो तीन चीजें। पहली बात है कि शामी जुब्बा क्या था, उस दौर में कीमती लिबास था और कुफार की हुकूमत थी और उन्होंने किसी ने गिफ्ट में भेजा था तो अल्लाह के नबी ने पहना। पहली बात तो ये पता चली कि अगर ऐसा कपड़ा जो कुफार ने तैयार किया है लेकिन उस पर कोई जाहरी नजासत नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे कल्चर में ये भी होता है ना, गैर मुस्लिम के हाथ लग गए, ये मासियाँ नॉन मुस्लिम है, इन्होंने बाल्टियों को हाथ लगाया, अब इसको कलमा पढ़ के धो लो, सुना हुआ अपने अपने दौर में, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी नॉन मुस्लिम के बने हुए कपड़े अगर जाहरी तौर पे उस पर कोई नजासत नहीं, कोई गंदा मटेरियल नहीं लगा तो उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। दूसरी बात क्या पता चलती है इसमें कि जरूरत के तहत अगर बाजू ऊपर ना हो रहा हो तो कमीज को उतार कर वजू किया जाएगा। ये खवातीन का मसला होता है, खासतौर पे जब अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो वॉशरूम में जाएं, कमीज उतारें और पूरी बाजू धो के जैसे भी धोनी दोबारा कमीज पहन लें। ये कहना कि चूंकि सर पे मसा हो जाता है तो बाजुओं पे भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आखिरी रिवायत पढ़ते हैं आज के टॉपिक की। कराहियतु तअर्री फिस्सलाती, नमाज में बरहना होना यानी नेकिड होना, कपड़ा उतर जाना, इसकी मुमानियत। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हुमा युहद्दिसु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, बयान करते हैं, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना थे, यनकुलु उठाते या मुंतकिल करते, मा हुमुल हिजारत लिल काबा, उनके साथ पत्थर काबा के लिए, यानी जब काबा की तामीर हो रही थी तो अल्लाह के नबी सल्लम पत्थर उठाते थे। कब की बात है ये भला, नबी सल्लम के लड़कपन की, अर्ली टीनेज की, नबूबत से पहले का वाक्या ये है। ठीक है, वाले ही इजारुहू, तो आपका एक तहमत था यानी कपड़ा एक बांधा हुआ था आपने, जैसे लड़के बच्चे पहन लेते हैं। फकाल लहुल अब्बासु अम्मुहू, तो आपके चचा अब्बास ने कहा, यबनो सॉरी यबना अखी, ए मेरे भाई के बेटे यानी भतीजे, लो हललता इजारा का, अपना तहमत उतार लो। फजालतहु अला मन की बही का दून अल हिजारा, तो अपना तहमद उतार कर इसे अपने शानों पर पत्थर से बचाव के लिए रख लो ताकि आसानी हो। आप कहते हैं ना शोल्डर्स पे जब ईंटे या पत्थर रखे होंगे तो चुभते हैं, तो क्या कपड़ा तो एक ही, तो बच्चे ही हो ना, यंग लड़के थे बिल्कुल, तो उस दौर में लोग नेकिड होना को बुरा नहीं समझते थे। तो इनके चचा ने कहा कि तहमद से उतार के शोल्डर में रख लो ताकि जब पत्थर रखो तो तुम्हें चुभे ना। काला, फिर आपने फरमाया, यानी कौन, जिब्राइल कहते हैं, फहल्लहु फजालहु अला मन की वही ही फसकता मगशीजन अलैह, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि उसके बाद जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपने अपना तहमद उतार कर अपने कंधों पर रखा तो आप उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े। फमा रुइया बाद ज़ालिक उरियानन, फिर ना आप देखे गए इसके बाद कभी भी बरहना, यानी आपकी हया की तरफ इशारा है कि आप कितनी हया वाले थे कि जब आपका तहमत का कपड़ा उतरा तो आप उसकी शर्म और हया की वजह से बेहोश हो गए। बाज़ रिवायत में यहाँ तक आता है कि एक फरिश्ता उतरा, फिर इसने दोबारा आपको तहमत बांध दिया, और इससे ये पता चलता है कि नबूवत से पहले, बेसत से पहले भी आप बुरे कामों और बेशर्मी की बातों से महफूज समझे जाते थे। तो बरहना होना, नेकिड होना आम हालात में पसंदीदा नहीं है, तो फिर बाकी वक्तों में इसको कैसे पसंद किया जाएगा। तो ये था किताबु सलात का वो हिस्सा अमूमन जिसका ताल्लुक लिबास के साथ था। आप लोग कोई बात, सवाल पूछना चाहें या शेयर करें तो मोस्ट वेलकम। जी आप कुछ पूछना, जी
जी
प्लीज।
कसर नमाज के हवाले से एक सवाल है। जैसे मेरी सिस्टर इन लोग ऑक्सफोर्ड रहते हैं, तो हम अक्सर कभी उनको मिलने जाते हैं, तो वहाँ कसर नमाज हम पढ़ेंगे
लंदन से बाहर है ऑक्सफोर्ड,
जी।
तो भाई फिर कसर ही पड़ेंगे। जब आपको फीलिंग आ रही है कि आप अपने शहर से निकल गए हैं, तो फिर कसर शुरू हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं ना वापस,
हम उसी दिन ही रात को
बस तो
आ
फिर
जाते
कसर
हैं
पड़ेंगे। मजा है, बल्कि अच्छा है, पूरी कसर पढ़ के वापस आए।
जी। और वहाँ अक्सर जाके तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जोहर को असर के साथ मिला लो,
जी,
दो फर्ज।
जोहर को असर से, या असर को जोहर से, मगरिब को ईशा से, या ईशा को मगरिब से, दोनों सहूलतें मौजूद हैं जी। आप क्यों नहीं करते, जमात से पढ़ते हैं तो कसर कैसे करेंगे? देखिए, जब आप मुसाफिर हैं और इमाम मुकीम है, तो जो इमाम करेगा वही आप करेंगे, ठीक है? अगर आप नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसाफिर हैं, तो आप थोड़ी पढ़ा के बाकियों को कह सकते हैं कि नमाज पूरी करें। तो जो हरम की जमात से पढ़ेगा, वो तो फर्ज तो पूरी करेगा ना जी। और कोई अगर मजबूरी है, जैसे कोई गुजरे और जमात गुजर गई, तो फिर आपकी चॉइस है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त वही कि आप 3 दिन से कम वहाँ स्टे करें, ठीक है? तो चलिए फिर यहाँ रुक जाते हैं, अल्लाह ने चाहा तो अगला इस नेक्स्ट सेशन में लेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।